പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരി ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയ ജബ് സേ ആരംഭ ഹുവാ ഹൈ 67 വർഷ പൂർവ ശുരു സേ ഹി ഹമാരേ ദോ മുഖ്യ സബ്ജക്ട് രഹേ ഹൈ ഈശ്വരീയ ജ്ഞാന ഓര സഹജ രാജയോഗ. ഇസ് ജ്ഞാന ഓര യോഗ കേ അഭ്യാസ സേ ഹമേ ജോ സുഖ മിലാ ഹൈ, ജോ മൻ കീ ശാന്തി മിലി ഹൈ, അന്തര കാ ആനന്ദ ജോ പ്രാപ്ത ഹുവാ ഹൈ, ആത്മാ മേ ജോ ശക്തിയാ പ്രാപ്ത ഹുയി ഹൈ, വോ സുഖ, വോ ശാന്തി, വോ ആനന്ദ വിശ്വ കീ സഭി ആത്മാഓ കോ പ്രാപ്ത ഹോ, ഇസി ലക്ഷ്യ സേ രാജയുഗ സത്രോ കാ ഹം സമയ പ്രതി സമയ ആയോജൻ കർത്തേ ഹൈ. ജഹാ തക് രാജയുഗ കീ ബാത് ഹൈ, ഇസ്മേ കോയി ശാരീരിക ക്രിയാ നഹീ ഹൈ. ജൈസാ കീ അബ് തക് യോഗ കേ നാം പർ ഹം ആസൻ പ്രാണായാമ ദേഹ ദമൻ കീ ഹഠ ക്രിയായേ കർത്തേ രഹേ ഹൈ, രാജയോഗ മേ ഐസി കോയി ശാരീരിക ക്രിയാ നഹീ ഹൈ. ഇസ് യോഗ കാ ആധാർ കോയി ശാസ്ത്ര നഹീ ഹൈ, കോയി മനുഷ്യ ഗുരു നഹീ ഹൈ. ഇസ് സഹജ രാജയോഗ കാ ആധാർ സത്യ ഈശ്വരീയ ജ്ഞാന ഹൈ. ഇസ്ലിയേ ആപ് ദേഖ്തേ ഹൈ രാജയോഗ കേ ഹർ സത്ര മേ പഹലേ ജ്ഞാന ദിയാ ജാതാ ഹൈ, ഫിർ അഭ്യാസ കരായാ ജാതാ ഹൈ. അനുഭവ കീ ജഹാ തക് ബാത് ഹൈ, ജൈസെ ജൈസെ ആപ് ജ്ഞാന സുൻതേ ജായേംഗേ, സമസ്തേ ജായേംഗേ, ആപ്കേ വിവേക കോ സ്വീകാർ ഹോതാ ജായേഗാ ഓർ അഭ്യാസ് കർതേ ജായേംഗേ, ഐസെ ഐസെ അനുഭവ കീ സ്ഥിതി പർ പഹുഞ്ചതേ ജായേംഗേ. യോഗ കോയി ക്രിയാ നഹീ ഹൈ, ജോ ആപ് സീഖ ലേ ഓർ ഘണ്ടാ ആധാ ഘണ്ടാ കർതേ രഹേ. യോഗ ജീവൻ പദ്ധതി ഹൈ, ജീവൻ കോ ശ്രേഷ്ഠ വിധി സേ ജീനേ കീ കലാ ഹൈ. ഇസ്ലിയേ ഹമാരാ ലക്ഷ്യ കോയി ഏക ദോ ഘണ്ടേ കേ യോഗി ബനനേ കാ നഹീ ഹൈ. ഹമാരാ ലക്ഷ്യ ഹൈ യോഗി ജീവൻ ബനാന. ഇസ്ലിയേ ജൈസെ ജീവൻ കേ ലിയേ ശാരീരിക സന്ദർഭ മേ हम रोज आराम करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज खुराक खाते हैं, रोज श्रम करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें शारीरिक रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, हेल्दी रहना है, तो हमें ये रोज करना है। इसलिए हम सभी ने उसको अपना रूटीन बना लिया है। कोई ये नहीं पूछते हैं कि कब तक खाना है, रोज खाना है, रोज सोना है, ये सवाल हमें नहीं होते हैं। इसी प्रकार योगी जीवन अगर मुझे बनाना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक रूप से शक्तिशाली और हेल्दी बनना है, मन बुद्धि को दिव्य बनाना है, तो हमें योग को कर्म में समाना होगा। हमें अपनी दिनचर्या में उसे समाना होगा। इसलिए हमें रोज ज्ञान सुनना है, रोज योग अभ्यास करना है। इसलिए आज आप सभी भाई बहनों को वो सहज विधि हम बताएंगे जो स्वयं पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को बताई है। योग का आधार आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान है, और आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए वास्तविक योग तभी संभव है जब स्वयं परमात्मा आकर सिखाए। इसलिए इस राजयोग का आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। इसलिए इसे सर्व योगों का राजा राज योग कहा जाता है। यहां योग का सरल अर्थ लिया जाता है, जैसे वियोग माना अलग होना, सेपरेशन, योग माना मिलन, कनेक्शन, संबंध जोड़ना। उसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, संबंध। और भी इसका एक सरल अर्थ है, योग मीन्स याद। परमात्मा से योग लगाना है माना उसे याद करना है, और याद करना, चिंतन करना, रिमेम्बरेंस मनुष्य का स्वभाव है। याद करना मनुष्य का स्वभाव है। हमें किसी न किसी की याद आती ही रहती है। कभी हमें अपने संबंधियों की याद आती है, अपने मित्रों की याद आती है, अपने साथियों की याद आती है, कभी हमें प्राप्ति के प्रसंग की याद आती है, सुख की बातें याद आती है, तो कभी हमें दुख की बातें, कुछ गंवा दिया है वो बातें हमें याद आती है। याद करना मनुष्य का स्वभाव है, तो नई कोई चीज सीखने की बात नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई योग सीखना हमारा काम नहीं, अभी हम योगी नहीं बन सकते, लेकिन नहीं, कोई नई चीज करनी ही नहीं है। और जैसी याद वैसे अनुभवों से हम सबका जीवन भरा हुआ है। कोई सुख के प्रसंग को याद करते हैं, हमें खुशी होती है। किसी ने हमें प्यार किया, साथ दिया, सहयोग दिया, हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमने कुछ गंवा दिया है, वो बातें याद करके हमें दुख का अनुभव होता है। किसी ने दुख दिया, घृणा की, असहयोग किया, नाराजगी का अनुभव होता है। जैसी याद वैसे अनुभव से हम सबके जीवन भरे हुए हैं। अब ये अनेक प्रकार की यादें और उन यादों के अनेक अनुभवों से हम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किस अनुभव का सार हम ले सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की याद, कोई भी वस्तु की याद सदा सुख देने वाली नहीं है, बल्कि दुख ही देने वाली है। मान लो एक व्यक्ति जिससे मुझे बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत सुख देते हैं, मैं उस व्यक्ति को अपना सर्वस्व समझ रही, परंतु कल वो व्यक्ति बदल गई, उनसे मेरे संबंध टूट गए, वो कहीं दूर चले गए या उसकी डेथ हो गई। अब उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होगी। कोई चीज है बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत प्रिय है, उसको देखकर मैं बहुत खुश होती हूं, लेकिन वो चीज टूट गई, फूट गई, कहीं गुम हो गई। अब उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती है। हम कह सकते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है व्यक्ति या वैभव, संसार में दो चीज है, तत्वों से बने हुए पदार्थ जिसको हम चीज, वस्तुएं, साधन, वैभव कहते हैं, और दूसरी है व्यक्ति, चैतन्य आत्माएं। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है व्यक्ति और वस्तु, दोनों परिवर्तनशील होने के कारण आखिरकार नाशवंत होने के कारण वो दुख ही देने वाली है, और इसलिए हम सबके ये अनुभव है अपने आसपास के समाज में, ये अनुभव हम देखते हैं कि जब हम चारों ओर से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, असहाय बन जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं रहता है तो हम किसको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। उस समय हम यही कहते हैं कि हे भगवान, अब तो आप ही मेरे आधार है। तो चारों ओर से धोखा खाएं, दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, असहाय बन जाएं, फिर भगवान को याद करें, इससे तो क्यों नहीं हम पहले से ही परमात्मा को अपना सहारा बना लें, उससे याद करें, जो दुखी होने की बात ही ना आए। जबकि हम सब जानते हैं कि वो ही सुख दाता है, शांति दाता है, शक्ति दाता है, सदगति दाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, दुख हरता सुख करता है, वो ही पतित पावन है, ऑलमाइटी है। इसलिए अब वो सहज विधि हम सीखेंगे ताकि उस अविनाशी पिता परमात्मा की याद में हम सहज रह सके। पूर्व दो सत्र जो आपके हुए हैं उससे आपने समझ लिया है कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये जो देखने में आ रहा है वो शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा। हमें स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, मटेरियल है। मैं आत्मा एनर्जी शक्ति हूं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड मैटर। और हमें अब यह भी स्पष्ट है कि वो परम शक्ति परमात्मा भी अति सूक्ष्म परम चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा है। हमें स्पष्ट है कि जन्म मरण के चक्र में आने वाली शरीरधारी आत्मा परमात्मा की याद से महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कल्याणकारी पिता है। तो जब न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है, न मैं प्राकृतिक सत्ता हूं, न परमात्मा कोई प्राकृतिक शक्ति है, तो अंडरस्टूड है कि आत्मा का परमात्मा से योग, कनेक्शन, संपर्क, मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है। कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है। मैं भी चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा भी अति सूक्ष्म परम चैतन्य शक्ति है। इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन, संपर्क, योग मन और बुद्धि से ही हो सकता है। मनन चिंतन करते हुए परमात्मा याद में हम मग्न हो सकते हैं। इसलिए मन और बुद्धि परमात्मा की याद में लगाने के लिए हमें बाह्य कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई स्थूल साधन लेने की आवश्यकता है। यही कारण है कि बाह्य अनेक साधन लेने के बाद पूजा, भजन, क्रियाकांड की अनेक सामग्री और साधन लेने के बाद, क्रियाएं करने के बाद भी मन भटकता रहा। परमात्मा का आदेश क्या है? मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मामेव बुद्धि निवेश्य, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। वो मन और बुद्धि हम कहीं और लगाकर बैठे हैं और परमात्मा की याद में माला लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, आसन कर रहे हैं। हमें मन लगाना है। और जहां मन लगेगा वहां तन और धन, समय अपने आप लगेगा। इसलिए बाह्य रूप की बात मैं करूं, राजयोग के अभ्यास में जब भी आप अभ्यास करने बैठे, अपनी सहज स्थिति में बैठना है। इसमें हमें कोई शारीरिक आसन, प्राणायाम की, देह दमन की कोई हट क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, वो अलग बात है, वो भल करे, वो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। पर जहां तक मन परमात्मा में लगाने की बात है, उसमें कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। कई आसन प्राणायाम की हट क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी कठिन नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। अगर पिता की याद में कष्ट हो तो उसे कौन याद करेगा? आज बिगर आसन, यहां आप आराम से बैठे, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते? हाँ, अगर आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो बुद्धि योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि भाई ये कब घंटा पूरा हो तो आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। और कलयुगी शरीर भी अब ऐसे हैं कि हम एक सिंपल पलथी मार के भी नहीं बैठ पाते। हम पहले अपने युवा भाई बहनों को कहते थे कि जो युवा है वो नीचे आके बैठो, बुजुर्गों को बैठने दो कुर्सी पर। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि युवा भी नहीं बैठ पाते। इसलिए जिस सहज स्थिति में आराम से लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं, उस सहज स्थिति में बैठ जाइए, फिजिकली रिलैक्स बैठना है। फिजिकली रिलैक्स बैठना है, लेकिन मेंटली अटेंटिव बैठना है। अगर मेंटली अटेंटिव नहीं बैठे तो आप नींद करेंगे। आसपास देख लो, कोई नींद कर रहा है? हाँ, जरा उठा दो। हाँ, योग में सोना नहीं है, दिव्य अनुभव करना। इसलिए मेंटली अटेंटिव बैठिए, लक्ष्य से बैठिए कि ये एक घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा की याद के लिए बैठा हूं, इस अटेंशन से बैठी। अपने आप को समझाइए, अन्य किसी की याद में कोई प्राप्ति नहीं है। रियलाइज करिए। इसलिए अपने आप को कहिए, हे मन, अब भटकना नहीं है, लक्ष्य मजबूत कर लीजिए, मुझे एक परमात्मा की याद में स्थित होना है। और सब बातें सोचने के लिए, याद करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं, जो आवश्यक है, जिसके लिए हम जिम्मेवार है, वो तो हमें सोचना ही है ना। लेकिन उस घर गृहस्थी, कारोबार, नौकरी, धंधा, समाज, संसार की बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। ये मेरे 2 घंटे सुबह शाम, मेरा ये 1-1 घंटा परमात्मा की याद के लिए है, स्वचिंतन के लिए है, श्रेष्ठ चिंतन के लिए। ये लक्ष्य पक्का करना है। अगर इस अटेंशन से बैठेंगे तो फिर मन को आप ठीक कर सकेंगे, ट्रैक पर ला सकेंगे। मैं ये नहीं कहती हूं कि 3 दिन में आप योगी बन जाएंगे। योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करना होगा, क्योंकि अब तक जीवन के जितने भी वर्ष बीते, और जन्मों की बात छोड़िए, लेकिन अब तक जीवन में हमने मन को भटकाने का अभ्यास दिया है या एकाग्र होने का अभ्यास ज्यादा दिया है, बताइए? भटकाने का। रोज की दिनचर्या में हमने मन का अधिक उपयोग किस चिंतन में किया? तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचने में किया है ना? तो स्वाभाविक है, जिन बातों को याद करने में, सोचने में हमने मन को अधिक लगाया, वही बातें तो याद आएगी। अब हम जागे हैं, अब हमें चिंतन की श्रेष्ठ बातें मिली हैं, अब हमें चेंज करना है। इसलिए जब आप परमात्मा की याद के लिए बैठते हैं और विचार आ जाते हैं, फिर अटेंशन में आइए। घबराना नहीं है, अभ्यास छोड़ना नहीं है। फिर अटेंशन में आ जाइए कि नहीं, अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी, अभी मुझे परमात्मा की याद में बैठना। थोड़ी सी ये मेहनत मन को एजुकेट करने की बहुत जल्दी सही बातों में मन को एकाग्र कर सकेंगे। हमें और चिंतन का अभ्यास है, पर चिंतन, सांसारिक चिंतन, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचने का अभ्यास हमें है। वो सहज हम कर सकते हैं, उसमें हमें समय की सीमा भी नहीं रहती है। आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं देर रात तक। फिर हम कहते हैं अरे रात के 11 बज गए, हमें समय की सीमा का भी ख्याल नहीं रहता और उसमें हमें नींद भी नहीं आती है। और यहां 5 मिनट स्वचिंतन के लिए हम बिठाते हैं, लोग सो जाते हैं। क्योंकि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। इसलिए वो बातें सोचने में हम एकाग्र हो जाते हैं, पर चिंतन कैसे करें वो सीखने के लिए कोई राज्य कोई शिविर में आप गए हैं कि भाई पर चिंतन कैसे करें वो हमें सिखाओ, कोई गए हैं शिविर में ऐसे? हाँ, उसमें तो मास्टर हो गए हैं सारे। और स्वचिंतन कैसे करे, परमात्मा चिंतन कैसे करे वो हमें सीखना पड़ रहा है। हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उस चिंतन में हम स्थित नहीं हो पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें कहते हैं हमें अपने फोकस को शिफ्ट करना है, जो बहिर्मुखी बन गए हैं हमें अंतर्मुखी बनना है, परमात्मा अभिमुख बनना है। इसलिए अगर इस अटेंशन से बैठेंगे तो थोड़े अभ्यास के बाद आप सहज श्रेष्ठ ज्ञान के चिंतन में लग सकेंगे। और यह भी बात है कि अब तक हमने बुद्धि में जो भरा है वो ही तो चिंतन में आएगा, जो इनपुट दिया है वो ही तो आउटपुट आएगा। हमने अपने मन बुद्धि को किन बातों से भरा है? अब हम रोज सत्य ज्ञान की बात सुनते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि ज्ञान का ग्रीत जितना पड़ता जाएगा ये स्मृति की ज्योत अखंड जलेगी। भक्ति में अखंड दीवा करते हैं ना, अटेंशन रखते हैं कि भाई घी डालते रहो बुझे नहीं। ये आत्मा का दीपक ज्ञान ग्रीत डालिए तो श्रेष्ठ स्मृति की ज्योत सदा जलती रहेगी। दूसरी बात, इस योग अभ्यास में हमें न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है, न मुख से आवाज करना है, क्योंकि रटना जपना ये औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? हा? महेश भाई महेश भाई महेश भाई रटते हैं हा? हम उससे नेचुरल याद करते हैं। उनके गुण, उनके बोल, उनके व्यवहार, उनके मेरे संबंध की हर बात हमें याद आती। तो परमात्मा की याद के लिए हम ऐसी औपचारिकता क्यों करते हैं? उससे भी नेचुरल याद करे ना। और इसलिए अनुभव आपका यही होगा कि एक बार रटने का, जपने का, माला फेरने का अभ्यास हो जाने के बाद वो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती है। फिर आप माला फेरते रहेंगे, मन भी फिरता रहेगा। मंत्र रटते रहेंगे, मन भटकता रहेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नियम है कि जिन बातों में मन इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो मन भटकना शुरू कर देता है। इसलिए ज्ञानी भक्तों ने भी स्वयं कहा है, कबीर जी ने भी कहा है, कर के मन के छोड़कर मन का फेर। राजयोग में इसलिए कोई शब्द मंत्र नहीं है। हमें यहां मंत्र के अर्थ में स्थित होना है, उसके अर्थ को आचरण में लाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति रटना नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उस शांति की स्थिति में स्थित होना है। हम भक्ति में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय रटते हैं, शिव को नमन करते हैं, लेकिन फिर सारा दिन परमात्मा शिव की आज्ञा पर चलते नहीं है तो उसका क्या अर्थ है? आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको हाथ जोड़ता है, पांव पड़ता है, लेकिन सारा दिन आपकी एक बात भी मानता नहीं है, तो आप उस बेटे को क्या कहेंगे? कि भाई इतना भारी शब्द नहीं बोली आप उसको आज्ञाकारिता कहेंगे, रिस्पेक्ट कहेंगे, उनका समर्पण कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे ना कि भाई ये बाह्य शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो सही बातें तुम मानो, मेरी अच्छाइयों को धारण करो, मेरे योग्य कार्यों में तुम मदद करो, वो तुम्हारा सच्चा प्यार। तो परमात्मा से सच्चा प्यार है, निश्चय है, समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके गुणों को धारण करें, मन वचन कर्म से उनको फॉलो करें। प्रैक्टिकल में वो ही योग है। इसलिए इसमें कोई शब्द मंत्र नहीं है। हमें तो याद में रहना है, चिंतन में रहना है, और याद करते करते उस के प्यार में मग्न होना है। इतने तक ये अभ्यास सहज है। कई भाई बहने पूछते हैं कि जब हम योग अभ्यास करने बैठे तो हम सामने क्या रखें, कहां मन लगाएं, क्या हम अपने इष्ट देव की प्रतिमा रखें, गुरु का फोटो रखें, ज्योति जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं, हम मन कहां लगाएं? क्योंकि अब तक हम कोई ना कोई साधन का आधार लेते रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, आप स्वयं विवेक से सोचिए कि मन कहां लगाना है, मन कहां लगाना है। हमें मन डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या प्रतिमा से। ये तो अब तक हम नहीं जानते थे, इसलिए हम साधन का, मूर्ति का, फोटो का आधार लेते रहे। लेकिन अब जबकि हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त है, तो अब हमें परमात्मा जो है, क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया, वो सारी महिमा, वो शांतिदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, सर्वशक्तिमान, वो जो है और जैसा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, और जहां रहता है उस परम धाम में डायरेक्ट मन वहां लगाना, न कि परमात्मा के चित्र से। इसलिए ये जो चित्र है वो समझाने के लिए है, हमें इनसे योग नहीं लगाना। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, या हर कमरे में आप देखते हैं वो रेड सिंबल है ज्योति बिंदु का, हमें उस सिंबल से योग नहीं लगाना। ये तो समझाने के लिए है, हमें योग डायरेक्ट उस चैतन्य परमात्मा से लगाना है। इसलिए अब तक नहीं जानते थे तो हम साधन का आधार लेते थे, ठीक है, आपके पिता विदेश गए हो तो आप चित्रों का तो आप उनके फोटो देखकर, उनके पत्र पढ़कर खुश होंगे, लेकिन पिता स्वयं विदेश से आ जाएं, फिर फोटो ही देखते रहेंगे या आए हुए पिता से मिलन बनाएंगे। इसलिए ये हमारे अब तक के प्रयास थे, उसी भक्ति का फल अब स्वयं परमात्मा सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। अब उस ज्ञान की समझ से, बुद्धि के बल से हमें उनको याद करना है। अभी मैं आपको कहूं कि सूर्य, इन आंखों से आप सूर्य यहां नहीं देख रहे, लेकिन जैसे ही मैंने सूर्य शब्द बोला, आप मन की आंख से विजुअलाइज करने लगे, क्योंकि नॉलेज है, इसलिए नॉलेज इज लाइट, ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। मन की आंख से ज्ञान की रोशनी में हम विजुअलाइज करते हैं, मैं आपसे मिलूं, लेकिन मन में वो अवेयरनेस ना आवे कि हां हम इस बहन जी से वहां मिले थे। अगर वो स्मृति मुझे नहीं आती है तो हम मिलेंगे तो भी मुझे मिलने का अनुभव नहीं होगा, मैं ऐसे ही मिलूंगी। पर अगर मुझे वो याद आ जाए कि हां आप वही भाई है, वहां आए थे, प्रोग्राम में बैठे थे, फिर मेरा मिलना अलग हो जाता है। इसलिए इन आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है, मन की आंख से देखना, स्मृति में आना वो जरूरी है। और परमात्मा कोई स्थूल भौतिक चीज नहीं है जो हम इन आंखों से देख सके, वो तो शक्ति का स्रोत है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसलिए सत्य ज्ञान के प्रकाश में मन की आंखों से विजुअलाइज कर हमें बुद्धि से उनको अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, चिंतन करना है। जैसे लौकिक में भी बच्चा छोटा है तो आप अंगुली पकड़ के चलाते हैं, वो चालन गाड़ी लेके साधन का आधार लेके चलता है, लेकिन हर माता पिता का प्रयास क्या होता है? क्या बच्चा जीवन भर अंगुली पकड़ के चले, साधन के बल चले? नहीं, हरेक का प्रयास होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी अपने पैरों के बल चले। तो अब हमें नया कुछ नहीं करना है, जो साधन के आधार से करते थे, अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। ज्ञान की शक्ति से, बुद्धि बल से वो अभ्यास करना है। अब इस बात को कहीं समझ लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां भक्ति छुड़ाती है। अब भक्ति छोड़ने की बात नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ने की बात है। आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और सिक्स्थ में आते हैं तो आप दुखी नहीं हो जाते कि अर अर पांचवी कक्षा मैंने छोड़ दी। आप खुश होते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड आगे बढ़े। तो ये भक्ति की भावना का फल सही ज्ञान है और ज्ञान के बल से योगी बनना है। इस रीति राजयोग के अभ्यास में जहां तक हो सके बाह्य रूप से कोई क्रिया कोई साधन नहीं है। सिर्फ दो बातें यहां आप देखते हैं जिसका बाह्य रूप में आधार लिया जाता है और वो भी प्रारंभिक रूप में, वो अनिवार्य नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं योग अभ्यास के समय हम लाल प्रकाश करते हैं, इसलिए कि हमारा जो असली घर है शांति धाम, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, लाल प्रकाश करने से एक एटमोस्फियर क्रिएट होता है और हमें अवेयरनेस आती है कि हमारा असली घर शांति धाम है। ये जैसे कि एक रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल होता है तो ट्रैफिक स्टॉप कर देते। ये लाल प्रकाश हमें अटेंशन दिलाता है कि अब आप सांसारिक विचारों के ट्रैफिक को स्टॉप करिए, स्थिति में स्थित हो जाइए, परमात्मा की याद में मन को लगाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि लाल प्रकाश ना हो तो मैं परमात्मा को याद नहीं कर सकती हूं, ऐसा नहीं। ये सहायक का है, अनिवार्य नहीं। और दूसरी बात, ईश्वरीय ज्ञान के, शिव बाबा के गुणों की महिमा के, ज्ञान के गीत बजाए जाते। ये गीत मन में भाव उत्पन्न करते हैं। जो मन परमात्मा के प्रति शुष्क बन गया है, नेचुरल भाव प्यार नहीं रहा है, ये ज्ञान के गीत मन में भाव उत्पन्न करते हैं और संगीत उस भाव को गति देते हैं। जब आपका अपना प्यार परमात्मा से हो जाएगा, खुद की लगन लग जाएगी, फिर इसकी भी आवश्यकता नहीं। फिर आपका मन ही गीत गाएगा, आपके अंतर में ही वो प्यार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली तीन बातों की आवश्यकता है। योग के लिए मानसिक तैयारी करनी है, शारीरिक या बाह्य नहीं। सबसे पहली बात, सही ज्ञान चाहिए। मुझे किसी की भी याद कब आएगी? मेरी बुद्धि में किसकी याद स्थान लेंगी? दुनिया में लाखों लोग हैं, क्या सबकी याद हमें आती है? आती है? नहीं। आज आप आबू घूमने जाएंगे, आपको सिटी में सैकड़ों लोग मिलेंगे, क्या सबको देखकर सबकी याद हमें आएंगी? नहीं। हमें किसकी याद आती है? पहली बात, हमें किसकी याद आती है? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। जिसको जानते ही नहीं है, याद करने का सवाल ही नहीं। इसलिए याद का प्रथम आधार है परिचय, सही ज्ञान। और वो सही ज्ञान आपको मिल चुका है। अब उस ज्ञान के बल से आप याद करना चाहें तो कर सकते। दूसरी बात, परिचय हमारा अनेकों से होता है, लेकिन अगर हमारा उनसे समय प्रति समय मिलना ना हो, उनसे हमारा संपर्क संबंध न रहे, तो थोड़े समय के बाद हम भूल भी जाते। हमें स्वतः नेचुरल किसकी याद आती है? आप अपने मन को ऑब्जर्व करिए। हमें रोज किसकी याद आती? जिनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, जिनसे हमारे संपर्क संबंध हैं, रोज जिनसे हमारा उठना बैठना, जीना, काम करना, खाना पीना है, उसी की ही तो याद आती रहती है। तो याद संबंध से स्वतः आती है। अब परमात्मा का परिचय हमें मिल गया है, अब उनकी याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी विधि क्या हुई? भगवान से संबंध जोड़ दो। सिर्फ मानो नहीं, सिर्फ मुख से गाओ नहीं, बाह्य रूप से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन निश्चय करिए परमात्मा ही मेरे असली अविनाशी माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। और प्रैक्टिकल मन वचन कर्म से भगवान के साथ इन संबंधों को फॉलो करो। जब मेरा ये निश्चय है कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, वही मेरा रक्षक शिक्षक साथी सारथी माता पिता बंधु गुरु सखा है, तो आप बताइए मुझे हर बात में हर स्थान पर हर क्षण किसकी याद आएगी? वही तो याद आएगा, क्योंकि वही मेरा सब कुछ। मुझे स्पष्ट है कि ये सब मेरे देह के संबंध है जो इस दुनिया में आकर मुझे मिले हैं। ये एक जन्म के विनाशी संबंध है, लेकिन मुझ आत्मा के अविनाशी संबंध, ओरिजिनल मेरे संबंध तो उस एक पिता परमात्मा से है। तो मुझे हर संबंध में हर कार्य में हर आवश्यकता में वही तो याद आएगा। इसलिए संबंध जोड़ना है, परमात्मा को अपना बनाना है। गॉड फादर कहते हो, लेकिन गॉड इज माय फादर, वो मेरा पिता है। और तीसरी बात कि जीवन में संबंध भी अनेक है, लेकिन इन अनेकानेक संबंधों में रिश्तों नातों में अधिक बार बार कौन याद आते हैं? कौन याद आते हैं? जिनसे दिल का सच्चा प्यार है। संबंध तो अनेक है, लेकिन मुझे बहुत वही याद आएगा जिससे मेरा दिल का प्यार है। तो परमात्मा से जितना प्यार होगा उतनी याद आपको आएगी। हाँ, याद नहीं आती है, मन नहीं लगता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपको सच्चा प्यार नहीं है। हाँ, वो प्यार किसी और से जुड़ गया है। हाँ, इसलिए हम तो सरल शब्दों में कहते हैं जितना प्यार उतनी याद आएगी। याद का आधार है प्यार, और इसलिए जिनसे प्यार है उसके लिए हम कहते हैं कि हमें उससे याद करना नहीं पड़ता है। वो केवल हमें याद आते नहीं है, लेकिन उनकी याद हमें सताती है। हम उससे भूल नहीं सकते, और जो सदा सुख देने वाला है, हमें शक्ति देने वाला है, हमें पावन बनाने वाला है, उसके लिए हम कहते हैं कि हमें याद नहीं आती है। हा? हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हा? कि जो दुख देने वाले हैं, एक जन्म के साथी हैं, जिनसे हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसको हम याद करते हैं। और जो सदा सुख देने वाला अविनाशी मुझ आत्मा का पिता है, उसकी याद नहीं आती। इसलिए दिल का सच्चा प्यार स्वतः याद आएगी। और लास्ट बात, प्रैक्टिकल में जब हम हमारे केंद्रों में यहां सामूहिक रूप से योग अभ्यास में बैठते हैं, इसकी विधि इतनी सहज है कि हमें इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी औपचारिकता क्यों? हम अपने मां बाप को, प्रिय को याद करने बैठते हैं तो हम ऐसा कहते हैं क्या कि आंख बंद करके बैठूं तो मन लगे? नहीं। अरे आंखें खुली हों, हजारों सामने बैठे हों, लेकिन मुझे जिनसे प्यार है उनकी याद मुझे आती ही है। वो मन की आंख के सामने से हटते नहीं है। तो क्यों नहीं इस नेचुरल विधि को हम अपनाएं, जबकि हमारा अनुभव भी है कि क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? हाँ, भटकता है। आंखें खुली हैं, इन चार दीवार के बीच में जो है वो आपको दिखाई देगा, आंखें बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती। इसलिए क्या सिद्ध होता है कि ये आंखें नहीं देखती है, इन आंखों से देखने वाले मन और बुद्धि है। इसलिए आंखें बंद है लेकिन मन की आंखें भटकती है तो मुझे सब कुछ याद आता है। और यह भी अनुभव आपको है कि मन एक बात के चिंतन में लगा है तो आंखें खुली हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और आप कहते हैं कि हाँ, मैं उस विचार में खोया हुआ था। आंखें बंद करके बैठते हैं, थके हुए होते हैं, फिर क्या होता है? नींद आती। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहे, आंखें नेचुरल खुली रहे। हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आंखें नेचुरल खुली रहती है, ऐसे परमात्मा को याद करते हैं, उस समय भी ये आंखें स्वाभाविक खुली रहे। न उसे बंद करने की कोशिश करिए, न आंखें फाड़ के बैठना। कई आंखें फाड़ के बैठते हैं, आंखें फाड़ के नहीं बैठना है, नेचुरल। हमें आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, मन पर अटेंशन देना है। इसलिए, और हैं हम सभी प्रवृत्ति में रहने वाले, हमें अपनी जिम्मेवारियां निभानी हैं, कारोबार करने हैं। आंख बंद करके परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे तो कर्म करते हुए कैसे याद कर सकेंगे? जब हम चाहते हैं कि परमात्मा को निरंतर कर्म करते भी हम याद कर सकें, तो नेचुरल विधि अपनाइए ना, अभ्यास वही करिए ना जो आंखें खुली रख के याद करें, ताकि हम कर्म करते भी याद कर सकें। और ये आंखें नेचुरल खुली रखने के लिए हैं या बंद रखने के लिए? खुली रखने के। आंखें बंद कब होती? जब इंसान थका हुआ हो, नींद आती हो तो आंखें बंद होती, वरना ये आंखें तो खुली रखने के लिए है ना। तो क्यों नहीं हम अभ्यास ही ऐसा करें आंखें खुली हो, मन का फोकस सिंह उस परमात्मा के प्रति हो और हम उसको याद करें, बहुत नेचुरल योगी आप बन सकेंगे। शुरू में आपको लगेगा, क्योंकि अब तक का अभ्यास आपका वही है बंद करके याद करने का, इसलिए शुरू में आपको लगेगा, लेकिन हमें सहज और राइट वे को अपनाना है ताकि हम सदा के योगी बन सके। आंखें बंद एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, कितना घंटा हम कर सकेंगे, जबकि हमें कर्म भी करने हैं। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। आज का योग अभ्यास मैं चाहूंगी कि हम विधि पूर्वक, पद्धति पूर्वक करेंगे। कोई भी आंखें बंद करके ना बैठे, सिर झुकाकर ना बैठे, परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कार्य है। हम उन्नत मस्तक से उसे याद करें। सिर तो कब झुकाना पड़ता है, कुछ गलत करे तो। परमात्मा को याद करना तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो मस्तक उन्नत रहे, आंखें नेचुरल खुली रहे। आज मैं निमित्त हूं योग अभ्यास कराने के लिए, आप मेरे मस्तक में देखेंगे कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। शरीर को देखते हुए आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। योग अभ्यास कराने वाली बहन है या भाई है, उनके शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। ये रूहानी आत्मिक दृष्टि रहे। अपना डायरी, फाइल, पर्स एक तरफ रख दीजिए। एक दूसरे से डिटैच होके बैठे, टच नहीं करें। हमें शांति से बैठ, मन ही मन कैसे पिता परमात्मा से बातचीत करनी है, उसे याद करना है, वो सजेशंस मैं देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में। आपको मुख से नहीं बोलना है, लेकिन मन से ऐसे ही सोचना है, उस अनुभव में स्थित होना है। अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। एक अविनाशी चैतन्य शक्ति मैं आत्मा शरीर धारण कर इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस देह की दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार शांति धाम है। जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं, मैं शरीर से यहां हूं, मन बुद्धि से अपने असली घर शांति धाम में हूं। मन की आंख से मैं विजुअलाइज कर रही हूं, जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। मुझ आत्मा के अति प्रिय हे परम पिता, अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूं। लेकिन आपका सही परिचय मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं मन से भटकती रही, तन से भी भटकती रही, कितने कल्याणकारी हैं जो स्वयं सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सही ज्ञान देते हैं। ये मेरा सौभाग्य है आपका सत्य ज्ञान अब मुझे भी प्राप्त हुआ है। अब मैंने अपने आप को सही रूप से जान लिया है। आप प्यारे पिता को मैंने ज्ञान के नेत्र से पहचान लिया है। मेरे मन का अंधकार समाप्त हो गया है। मेरा सद्विवेक जाग गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के अखुट भंडार है, जिन ज्ञान रत्नों के आप दाता हैं, वो सारा ज्ञान वो सर्वगुण वो सभी शक्तियां मुझे स्वयं में धारण करनी है। आप शांति के सागर हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जैसे ही मैं आपको याद करती हूँ मेरा मन शांत हो जाता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा प्यार के सागर ओ शिव पिता की संतान, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी याद और साथ से मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती हूं। अब मेरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, संसार की कोई परिस्थितियां मुझे आत्मस्थिति से चलित नहीं कर सकती है। मैं शांत और स्थिर मैं शुद्ध पवित्र हूं। मैं सत्य अविनाशी हूं। मैं नित्य चैतन्य हूं। ओम शांति।